अर्पा रेडियो के कार्यक्रम भारतीय प्राचीन मनीषा में आइए सुनते हैं भारत को चार खूंटों में किसने बांधा, वर्चस्व श्री दिनेश कुमार के स्वर में, भाग 8।
वे आर नेक्स्ट गुरु शंकराचार्य वापस नहीं आते, वहां से तत्काल हिमालय की ओर बढ़ते हैं, अगला पड़ाव जहां इस समय बहुत झटके आ रहे हैं, जहां बहुत झटके आ रहे हैं। 1201 किलोमीटर, 6637 किलोमीटर की यात्रा, और आदि गुरु शंकराचार्य सीधा जाते हैं पशुपतिनाथ के मंदिर में। जैसे ही मंदिर जाते हैं बड़ा दुखी होते हैं, बहुत दुखी हो, जहां देखो भैंसे के धड़, भैंसे के सर कटे हुए, चारों ओर रक्त बिखरा हुआ। शिवलिंग पर, जो वहां पशुपतिनाथ जी का मुख्य शिवलिंग है, उस पर कुत्ते आकर के रक्त चाट रहे हैं। ये अवस्था देख करके उनका मन बड़ा क्षुब्ध होता है और वो दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। पास के किसी वन में भटकते हुए उन्हें मां के दर्शन भी होते हैं, मां शक्ति के, आद्य शक्ति के दर्शन भी होते हैं। अपने स्थान पर वापस आते हैं। वहां के राजा को सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि यहां एक विलक्षण योगी आया हुआ है। वो आते हैं, राजा आकर के कहते हैं कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। आदि गुरु कहते हैं कि शिष्य तो बनाऊंगा, बट आई हैव अ स्मॉल रिक्विजिशन। वो क्या? ये पशुपतिनाथ के मंदिर में तुमने जो भैंसे और रक्त छोड़ा हुआ है, इसे बंद कराओ, और बंद करा करके यहां फिर से एक अभिषेक होगा, कुंभाभिषेक होगा, बहुत बड़ा अभिषेक करो, और वैदिक रीति नीति पर जो मंत्रोच्चारण है उससे पूजा अर्चना आरंभ कराओ। वो कहते हैं कि महाराज, हमारे पास आरती करने वाले तो हैं, लेकिन ऐसा काल विपरीत हुआ कि यहां वेदों का गायन करने वाले, मंत्रोच्चारण करने वाले लोग नहीं हैं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ये दायित्व तो मैं लेता हूं, मैं भेजूंगा। और साथ ही वो अपने दोनों शिष्यों को साथ लेकर के उसका कुंभ अभिषेक करते हैं, बहुत बड़ा आयोजन होता है, और काठमांडू से वो वापस चलते हैं काशी के लिए। काठमांडू से काशी की यात्रा आरंभ होती है और रास्ते भर ज्ञान सभाओं का आयोजन चलता रहता है। काशी पहुंचते ही उन्हें सूचना मिलती है कि पास ही प्रयाग में, जो संभवतः अलाहाबाद का क्षेत्र है, बिल्कुल पास में, वहां कुमारिल भट्ट नाम से एक बहुत बड़ा सनातन धर्म का एक तपस्वी हुआ है, आपको उससे मिलना चाहिए। कुमारिल भट्ट के विषय में कुछ संकेत देना आवश्यक है। हमारे यहां बौद्ध धर्म की अनेकों शाखाएं विकसित हुई, जिन्होंने वैदिक संस्कृति को छाड़ने में बहुत प्रयास किए गए, और कुमारिल भट्ट ने संकल्प लिया कि मैं वैदिक संस्कृति की स्थापना करूंगा, लेकिन उन्हें बौद्ध धर्म का पूरा ज्ञान नहीं था। इसके लिए उन्होंने एक बौद्ध गुरु को वरण किया, और वरण करने के उपरांत उनसे शिक्षण प्राप्त किया, और फिर बौद्ध धर्म छोड़ करके, क्योंकि अब उनके पास दोनों का ज्ञान था, वैदिक संस्कृति का भी और बौद्ध धर्म का भी, उन्होंने शास्त्रार्थ करके अनेकों बौद्ध गुरुओं को परास्त किया। लेकिन मन में उनके ग्लानी थी, ग्लानी यह थी कि मैंने किसी को छल से गुरु बनाया, और गुरु बना करके उसे किनारे करते हुए मैंने अपने आप को पुनः अपनी धारा में लाया, तो मैंने गुरुद्रोह किया। हालांकि बौद्ध अनुयायियों ने दंड के स्वरूप उनकी एक आंख भी निकाल दी थी, लेकिन उनको इससे संतोष नहीं था। वो स्वयं को प्रायश्चित की अग्नि में डालने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं अपने आप को ऐसे अग्नि दाह में समर्पित करूंगा जिसमें मैं तिल तिल के जलूंगा। भूसे के ढेर पर अपने आप को उन्होंने अवस्थित किया, नीचे से चिंगारी लगा दी, भूसा धीरे धीरे सुलगता है, और उन्होंने कहा कि मैं भी तिल तिल के जलूंगा तो प्रायश्चित में मेरी उस गुरुद्रोह की ग्लानी भी चली जाएगी। इस बीच में शंकराचार्य को पता लगता है कि कुमारिल भट्ट से मिलना चाहिए। शंकराचार्य जैसे ही पहुंचते हैं, कुमारिल भट्ट अग्नि के ढेर पर बैठ चुके हैं। उस अवस्था में दोनों का संवाद होता है। आदि गुरु कहते हैं कम डाउन, तुम्हारी बड़ी जरूरत है, सनातन धर्म को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, नीचे उतरो। कुमारिल भट्ट कहते हैं इट इज टू लेट माय डियर बॉय, मैं तुम्हारे लिखे हुए भाष्य पढ़ चुका हूं। आप सोचिए, उन दिनों प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, हाथ से कॉपियां बना बना करके लोग ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रसारित करते थे, और आदि गुरु की उस भाष्य इत्यादि पढ़ चुके थे, तो उन्होंने कहा मैं नीचे तो नहीं आ सकता। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, प्रकांड विद्वान थे, ऐसे सूर्य थे कि उसके सामने कोई टिकता नहीं था। और आदि गुरु शंकराचार्य अपने उस अभियान में कोई समय नहीं गंवाते थे, केवल उतनी प्रतीक्षा की जितने में कुमारिल भट्ट पूर्ण रूप से भस्म नहीं हुए। तत्काल अपने शिष्यों के साथ उन्होंने कदम बढ़ा दिया जहां मंडन मिश्र रहते थे। उस स्थान का नाम बिहार में है महिष्मती। महिष्मती 914 किलोमीटर 8045 किलोमीटर की यात्रा। यहां बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं घटती हैं। जैसे ही महिष्मती गांव में पहुंचते हैं, शंकराचार्य जी अपने शिष्य को कहते हैं, महिलाएं खड़ी हैं, संभवतः कोई ऐसा कुआं होगा या कोई स्थान था, पूछो मंडन कहां रहते हैं। वो शिष्य पूछने जाता है, महिलाएं बताने से पहले हंसती हैं और फिर संकेत करती हैं। आदिगुरु शंकराचार्य शिष्य से पूछते हैं, क्यों हंस रही थी? शिष्य संकोच में कहता है, छोड़ दीजिए, ऐसे ही। नहीं नहीं, क्या बात थी, हंसी क्यों? तो जब उन्होंने पूरी तरह से जोर लगाया तो उसने कहा, मैंने जैसे ही मंडन मिश्र का घर पूछा तो कहने लगी, लो आज फिर कोई ब्रह्मचारी मंडन के साथ शास्त्रार्थ करेगा, शास्त्रार्थ में हारेगा, ब्रह्मचर्य का त्याग करेगा और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, पता नहीं आज कौन सी लड़की भाग खुलने वाले हैं। ये सुनकर के वो हंस रही थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने सुना और सुनकर के आगे बढ़ गए। जैसे ही मंडन के मकान के पास पहुंचे, आसपास के लोगों ने कहा, आज वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहा है, शाम तक चलेगा उसका वेद पाठ, आपको दक्षिणा चाहिए ना, भिक्षा हम देते हैं। शंकराचार्य कहते, नहीं भिक्षा नहीं, कुछ और लेने आया हूं। लोग समझाने की चेष्टा करते हैं, नहीं नहीं, एक लड़के को मुख्य द्वार पे खड़ा करके कहते हैं, तू बोल भिक्षाम देही भवती, और खुद मकान के पीछे से चले जाते हैं। जब पीछे से जाते हैं तो आश्चर्य करते हैं, तोते पैरट्स जो मंडन मिश्र के घर में थे वो वेद मंत्र बोल रहे हैं। सोचते हैं आदमी तो कोई कमाल का होगा, तोते वेद पाठ कर रहे हैं। किसी तरह से पीछे से घुसते हैं, मंडन मिश्र इनको देखता है, बातचीत होती है, गुस्से में आ जाता है, क्रोध में, कि जब कह दिया ना शाम तक इत्यादि इत्यादि। वो कहते हैं, मुझे तुमसे शास्त्रार्थ करना है।